Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रार्दयदा तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 विषय को आगे बढ़ाना आवश्यक है। दो तीन दिन से एक ही जगह अटका हुआ है, फिर भी ये बात समझने की है कि आत्मा कोई अनेक नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था में कोई और आत्मा हो जाता हो, स्वप्न में कोई और हो जाता हो, सुषुप्ति में कोई और हो जाता हो, वही आत्मा बस उसके नाम बदल जाते हैं क्योंकि उसकी उपाधियां बदलती रहती हैं। जागृत में इंद्रियों की उपाधि की प्रधानता होती है, इसलिए दक्षिणाक्षी मुखे कह दिया, नेत्र में बैठता है। और स्वप्न में मन की प्रधानता होती है, इसलिए मन में बैठता है, तेजस ऐसा बोल दिया। और सुषुप्ति में जहां से ये मन और इंद्रियां निकलती हैं उस हृदय आकाश में जाकर के सब बैठ जाते हैं, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में मैं हृदय आकाश में प्राज्ञ रूप से रहता हूं। अब आप ये देखो कि ये तीन है कि एक है, ये याद रखने का है। आप तीन को तीन तब कह सकते हो जब तीनों एक साथ दिखें। दिखते तो एक एक करके हैं, जब जागृत दिखता है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं दिखती, जब स्वप्न दिखता है तब जागृत सुषुप्ति नहीं दिखती, जब सुषुप्ति में होते हैं तो जागृत स्वप्न नहीं दिखता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा ही अपने नाम बदल बदल करके इन रूपों में प्रकट होता है। अच्छा, इस समय आपको आत्मा से कुछ और हो गए क्या? बोले हम सत्संगी हैं। अरे भाई, सत्संगी भी तुम ही हो। और जो सत्संग में नहीं आ रहे हैं वो क्या वो उनमें आत्मा नहीं रहता है? वो जानते नहीं है कि हम आत्मा हैं। तो अपने को टटकू मटकू कुछ भी मानो, लेकिन रहेंगे सब आत्मा ही। मूल बात इतनी ही है। तो त्रिधा देह व्यवस्थितः, देह इसके तीन हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, और ये एक के बाद एक ऐसा नहीं है। जिस समय जिस देह को हम पकड़ते हैं बस वही देह है, उसी में तीनों हैं। जैसे इस समय हम स्थूल शरीर में बैठे हैं तो तीनों हैं इस समय, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है। और जब सपने में चले जाएंगे तो मालूम भले ही ना पड़े स्थूल शरीर, लेकिन कहीं चला जाता है क्या स्थूल शरीर? तो मालूम तो एक एक करके पड़ते हैं, लेकिन रहते तीनों हैं। तो त्रिधा देहे व्यवस्थितः, बोले जैसा जागृत में मालूम पड़ता है फिर वैसा ही सपन में सुषुप्ति में अपना आपा क्यों नहीं मालूम पड़ता है? तो इसमें एक युक्ति दी है कि जैसे आप दर्पण में अपना मुंह देखते हो तो दर्पण में तो कांच ही तो होता है। अगर कांच में पीछे पॉलिश न हो तो मुख देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। लेकिन आगे और पीछे दोनों ही पॉलिश कर दो तो भी नहीं देखा जा सकता। तो एक तरफ पॉलिश होती है और एक तरफ अनपॉलिश्ड होती है। तो मुंह किसमें देखता है, पॉलिश्ड में या अनपॉलिश्ड में? अनपॉलिश्ड में। तो ये एक है प्राण और एक है मन। तो ये अपना आत्मा का जो मालूम पड़ना है ये मन में होता है, प्राण में नहीं होता है। मन आगे का हिस्सा है दर्पण का, और ये प्राण जो है ये इसकी बैक में रहता है, सबके बैक में। बिना प्राण के तो शरीर की कोई गति नहीं है। ये पॉलिश है, इसमें नहीं देखता। एक और वाक्य बड़ा अच्छा है, ये सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है तो इसकी व्यापकता जो है वो कैसी है? तो ये बोल तो रहा हूं मैं स्वामी रामसुखदास जी के शब्दों में। वो कह रहे हैं कि सत्य की व्यापकता सर्वत्र है। सत्ता है, ये है, वो है, मैं हूं, नहीं है, नहीं है मैं भी है ही है। तो है की व्यापकता तो सब में है। तो सत रूप से परमात्मा सर्वत्र है और अनुभव में भी आ रहा है। लेकिन पत्थर को आएगा क्या? क्या पत्थर अनुभव कर सकता है कि मैं सर्वत्र हूं? तो उसमें चूंकि चेतना नहीं है इसलिए वो अनुभव नहीं कर पाता। तो मनुष्य या प्राणी क्यों अनुभव कर लेता है? क्योंकि इसमें वो कारण है, अंतःकरण जिसको बोलते हैं। उस अंतःकरण तो सत को तो सब पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्ञान को सिर्फ वही पकड़ पाता है जो जिसमें अंतःकरण होता है। पत्थर नहीं पकड़ सकता। तो बोले आनंद भी तो है। तो आनंद कौन पकड़ पाता है? बोले प्राणी तो सब आनंद में आनंद पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो सब यही मानते हैं कि अमुक विषय से आनंद आया, अमुक विषय से। तो सुख को पकड़ने वाले तो सारे प्राणी हैं, लेकिन निर्विषय सुख को आनंद को पकड़ने वाला सिर्फ मनुष्य है, देवता भी नहीं पकड़ सकते। सिर्फ मनुष्य है, और मनुष्यों में भी वो है जो अंतर्मुख है, महात्मा समझ लो, जिसकी कामनाएं शांत है। कामनाओं की शांति में मनुष्य आनंद को पकड़ पाता, और कामनाएं जब बहुत होती हैं तो उपस्थित आनंद को भी नहीं समझ पाता है। अब कहते हैं कि विश्व ही स्थूल भुंग नित्यम तैजस प्रविवेक्त भोग आनंद भोग तथा प्राज्ञ स्त्रधा भोगम निबोधत हूं। अलग अलग अवस्थाओं में भोग अलग अलग है। विश्व का भोग है स्थूल विषय, इसलिए विश्व जो है वो स्थूल भोगों का भोगता है। जागृत अवस्था में आपको भूख लगी हो तो रोटी चाहिए, आपको नहीं मन से खा लो, तो मन से खाने से भूख नहीं जाएगी। और स्वप्नावस्था में यदि भूख लगी हो तो जागृत में रोटी चाय जितनी रखी हो वो स्वप्न में काम नहीं आएगी, वह स्वप्न की ही रोटी चाहिए ना। तो स्थूल विश्व जो है वो स्थूल भोगों का भोगता है, और तेजस जो है वो सूक्ष्म भोगों का भोगता है, और प्राज्ञ आनंद का भोगता है, आनंद भोग आया ही था। त्रिधा भोगम निबोधता, ये तीन प्रकार के भोग तीन दशाओं में हमको प्राप्त होते हैं। हमको मैंने कह दिया तो विश्व तेजस प्राज्ञ नाम वाले जो हम हैं उनको प्राप्त होते हैं। स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविविक्तम तु तेजसम आनंदश्च तथा प्राज्ञम त्रिधा तृप्तिम निबोधतः। अब तृप्ति भी तीन प्रकार की है। जागृत में जो विश्व है उसकी तृप्ति स्थूल विषय करेंगे, और स्वप्न में जो तेजस है उसकी तृप्ति सूक्ष्म विषय करेंगे, और सुषुप्ति में जो प्राज्ञ है उसकी तृप्ति आनंद करता है, जो जहां का भोग है वही उसकी तृप्ति करता है। त्रिधा तृप्तिम निबोधतः, तीन प्रकार की तृप्ति को जानना चाहिए। अच्छा, अब ये जो अगली कारिका है ये समझने की। त्रिशुधाम सुयद भोग्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदै तदुभयम् यस्तु सभुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु यद भोज्यम्, तीनों अवस्थाओं में तीनों धामों में, धाम माने यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य कहा गया और जो भोक्ता कहा गया, तो भोज्य तीन तीन बताए और भोक्ता भी तीन तीन बताए। अरे बोले ये नहीं भाई, तीनों में मैं ही तो भोक्ता हूं, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भोक्ता नहीं है। सिर्फ भोगने का जो हमारे पास उपाधि है, करण है, वो बदलती है। जागृत में इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, स्वप्न में मन के द्वारा भोगते हैं, और सुषुप्ति में अविद्यावृत्ति से साक्षी के द्वारा सीधे ही भोग होता है। तो तीनों अवस्थाओं में जो एक भोक्ता बताया और भोज्य बताए तीन, तो बोले वो तीन तीन नहीं है, वो भी एक ही है। क्योंकि भोग किसको कहते हैं ये बात कल बता तो दी थी, फिर भी समझ लो। उपलब्धित्वम नाम भोक्तृत्व, भोक्तृत्व नाम उपलब्धित्व। सिर्फ ज्ञान होना यही उसका भोग है। अगर आपको ज्ञान न हो तो कितना भी भोग की सामग्री आपके पास पड़ी हुई हो आपको कोई सुख नहीं दे सकते। सामग्री है और भोग की कारण ही आपके पास नहीं है तब भी सुख नहीं दे सकते। अच्छा, और भोग की सामग्री भी है और इंद्रियां भी हैं, और जब भोग का समय आया तब बेहोश हो गए, सुषुप्ति आ गई, तब भी आपको कोई सुख नहीं होगा। तो एक ही भोक्ता है और एक ही भोज्य है। वो भोक्ता कौन है कि आत्मा? और एक भोक्ता तो गाली है, मैं कर्ता भोक्ता हूं, इसको तो गाली मानते हैं वेदांत में। तो बोले कर्ता भोक्ता गाली भी है, मगर ये बताओ कि आत्मा से भिन्न और कौन सा कर्ता भोक्ता आएगा? जहां भी ज्ञान होगा वहां आत्मा की उपस्थिति तो स्वीकार करनी पड़ेगी, सिर्फ उसमें एडिशनल और स्वीकार करना पड़ता है उपाधि का। तो इंद्रियों की उपाधि से स्थूल का भोक्ता बन जाता है, ऐसे मन की उपाधि से सूक्ष्म का हो जाता है। अच्छा, ब्रह्म भोक्ता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो अपने से भिन्न कुछ अनुभव ही नहीं करता। और ईश्वर भोक्ता है कि नहीं? वो है, उसके पास क्या कारण है? माया, वो माया के द्वारा भोक्ता बनता है। लेकिन वो माया के द्वारा उसको बांधता, माया बांधती नहीं है उसे, क्योंकि संपूर्ण व्यापक है माया, और उसी माया का एक अंश हमारे पास है, अविद्या जिसको बोलते हैं, वो बांध लेती है हमको। छोटी चीज को पकड़ोगे तो बंधेंगे, और उसे फैला दो तो नहीं बंधेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का गुर समझ लो इसे। जैसे सेवा है तो शरीर की सेवा करो, अपने अपने शरीर की तो सभी सेवा करते हैं, तो वो भी बांधेगी। और बोले मां की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाई की सेवा करो, बहन की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करो, जितना जितना इसको फैलाते जाओगे उतना ही उतना वो सेवा बांधेगी, नहीं छुड़ाती जाएगी। फिर बोले ईश्वर की सेवा करो, देश पेश सब छोड़ो, चाहे करो देश की लेकिन ईश्वर की सेवा समझ करके करो, तब तो आप कर्म करते हुए मुक्त ही हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। यही कर्मयोग का मूल सूत्र है। अच्छा, पैसा बांधता है कि मुक्त करता है? तो अगर सिर्फ अपने ही लिए खाते कमाते हैं तो बांधेगा, उसमें शामिल परिवार को कर लो तो कम बांधेगा, और दायरा बढ़ाते जाओ। ये दान है, दान का मतलब ये भाई किसी देव, यज्ञ है, यज्ञ माने बांटो, दान माने संकल्प पूर्वक दो, और यज्ञ माने बांटो। एक सज्जन बोले कि आपके पास ये कपड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्या करते हो इसका? मैंने कोई लेता ही नहीं है ना लाल कपड़ों से लोग भाई महात्माओं को तो सब मिलते ही रहते हैं और बाकी लोग जो है वो लाल कपड़ों से जरा डरते हैं, कहीं छूत का रोग ना लग जाए, तो मैंने कोई लेता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इनकी एक गट्ठर बांधो और गठरी बांध करके बाहर रख दो, दरवाजा कर लो बंद, जो चाहे से उठाए, तुम्हारे से तो जान छूटी ना ना रहे। तो यज्ञ यही होता, यज्ञ माने यही है वितरण। इतना पैसा हमारे पास ज्यादा हो गया, अब इसको बांट लो, तो किसी बहाने से बांटो, यज्ञ कर लो। हवन करना ही यज्ञ नहीं होता है, तो जो भी सत्कर्म है उसमें पैसा झोंक दो, वही यज्ञ हो जाता है। चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत सारे यज्ञ बताए हैं, जो यज्ञ अपने को सूट करता हो वो करें। तो ये जब हम तीनों अवस्थाओं का एक भोग है और एक ही भोगता है आत्मा, सिर्फ उपाधि के अंतर से नाम और नामी में फर्क पड़ते हैं, तो जब ये जान जाते हैं तो भुंजानो न लेप्यते, फिर वो भोग करते हुए भी उनसे लेप को प्राप्त नहीं होगा। ये इसका दृष्ट फल है इतने का। अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, तत्व ज्ञान की तरफ चल रहे हैं। लेप की परिभाषा एक कल एक सेंटेंस में बोली थी, अहम का इदम के साथ संबंध स्थापित करना, इसी को लेप बोलते हैं। तो वो तो बोले कि वो तो स्थापित हो जाता है। अरे भाई, किसी को मान लो नौकरी करता है, तनख्वाह मिली तो लाके घर में रखी, तो क्या यूं समझेगा कि ये मेरी नहीं है तनख्वाह? तो रुपया तो इदम है और ये मेरा है, ये मैंने मान लिया, तो क्या इतने मात्र से ही लेप हो जाएगा? बोले इतने मात्र से लेप नहीं होगा। अब उसमें क्या है कि ये ऐसा पैसा आता ही रहे और खर्च न हो, तिजोरी भरती ही जाए माने अहम और इदम का जो संबंध है वो परमानेंट होता चला जाए, बस यही, इसी को लेप बोलते हैं। अरे प्रत्येक क्षण तो अवस्था बदल रही है, जागृत कितनी देर जागृत रहेगी? ज्यादा हिस्से में जागृत रहती है ये तो ठीक है, लेकिन बदलती तो ये भी है ना, स्वप्न भी बदलता है, सुषुप्ति भी बदलती है, समाधि भी बदलती है, भावराज्य भी बदलता है, सब बदलता ही बदलता है। एक परमानेंट तो साक्षी है जो सबको देखता है ना। तो बस यही है कि वो फिर लेप को प्राप्त नहीं होता। बदलने वाली चीज को बदलने के वाली चीज समझ लो, और ना बदलने वाली चीज जो है वो आत्मा है, वो मैं हूं। मेरे सामने जितने बरस का जो है, इतने बरस की सारी चीजें आई और गई, मैं तो जो का त्यों ही रहा, शरीर भी जा ही रहा है। अब ये बात आती है कि हर जगह आपने समष्टि का विचार किया, विश्व की जागृत अवस्था में विश्व की बात आई तो फिर वहां विराट की विचार करने लगे, तेजस की बात आई तो हिरण्यगर्भ का विचार करने लगे, सुषुप्ति की प्राज्ञ की बात आई तो तो ईश्वर की बात करने लगे। और उपनिषद ने कह दिया कि यही जो प्राज्ञ है, यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, इसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो सुषुप्ति का अनुभव तो यह है कि वहां तो सिर्फ सांस चलती रहती है और आनंद होता है, सुख होता है, ये तो सब बाद में मालूम पड़ता है। तत्काल तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि आनंद है कि सुख है कि क्या है। देख, बेहोशी किसी अवस्था है, इसको आप ईश्वर कैसे कह रहे हो? अब ये बाकी जो कारिकाएं हैं ये उसी के बारे में। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतो अंशून पुरुषः पृथक्। बोले जागृत और स्वप्न में जो वस्तुएं निकली ये मैं हैं ऐसा मालूम पड़ता है ना। सताम माने विद्यमान, जो वस्तुएं इस समय विद्यमान मालूम पड़ती हैं वो आखिर आई कहां से? बोले कहीं से आई होंगी, हमें इससे क्या मतलब? तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये तो भोगी की पहचान है। बोले सामने है तो बस इसका फायदा उठा लो, कहां से आई, क्यों आई, झंझट में क्यों पड़े? क्योंकि निर्णय तो कोई करता नहीं है और 10 आदमी 10 तरीके से निर्णय करते हैं। तो भाई जो विद्यमान वस्तु है उसकी उत्पत्ति जरूर होती है, वो पहले कहीं नहीं थी और फिर सामने आ गई। तो बोले महाप्रलय में नहीं थी, तो महाप्रलय तो जैसे पहले बात आ चुकी है वो तो जनरलाइजेशन है सुषुप्ति का। महाप्रलय कोई देख नहीं सकता, सुषुप्ति सब रोजाना देखते हैं। तो जितने भी विद्यमान वस्तुएं हैं उनकी प्रभाव माने उत्पत्ति होती है, ये निश्चित बात। अर्थात किसी अवस्था में वे नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है और फिर है ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छा, ये शरीर कहां से आया? तो बोले बाप से आया। तो बोले बाप में कहां से आया? तो स्वामी महेशानंद जी कहते हैं कि वो तो बाप के बाप को भी पता नहीं है कहां से आया। इसीलिए कहते हैं कि अज्ञान में से ही सब चीजें निकलती हैं। जिस अंतिम जब सबका उत्तर यही है कि पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, तो पहले ही मान लो ना कि अज्ञान में से आया। बोले ये कहीं इसका दृष्टांत है कि सुषुप्ति है? सुषुप्ति ऐसी अवस्था है कि वहां कुछ अनुभव में नहीं आता है और फिर सब अनुभव में आने लगता है जैसे ही टूटती है। तो अगर वहां नहीं था उस समय तो निकल कहां से आया?